बाबाप की श्रीमत ने जिंदगी बदल दी, बाबाप की श्रीमत ने जिंदगी बदल दी।
ओम शांति। हम सभी आत्माएं, कितनी महान आत्माएं हैं जो हम आत्माओं का मार्गदर्शन स्वयं परम आत्मा कर रहा है। हर एक आत्मा के जीवन की यही चाहना होती है कि हमारी राह, जीवन की जो राह है, आसान रहे, सफल रहे और रास्ते में कुछ मुश्किल बात आए तो कोई मदद देकर हमको आगे बढ़ा दे। यह तीन बातें सबके जीवन में सदा रहती है। हम जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सदा चाहना यही रहती है, रास्ता सही दिशा में मिले, सफलता मिलती रहे और विघ्न आए तो कोई मददगार बन जाए जिससे विघ्न जल्दी समाप्त हो जाए। हम आप आत्माएं भगवान को पहचान लिया, हमारी आप सबकी मंजिल है मुक्ति धाम चलकर जीवन मुक्ति धाम में आना। मुक्ति धाम में चलना अर्थात एकदम पावन बनना, क्योंकि मुक्ति धाम में तो सर्व आत्माएं जाएंगी, लेकिन जो भगवान के बच्चे बन चुके हैं वो आत्माएं और जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है वो आत्माएं भी मुक्ति धाम में तो जाएंगी, लेकिन दोनों के जाने में अंतर है। क्या अंतर है? जैसे लौकिक में आपने देखा होगा कि कोई वीआईपी आता है तो उसके आगे पीछे गनमैन होते हैं, बॉडीगार्ड, बंदूक लेकर चारों तरफ उसके खड़े रहते हैं और उस बंदूक के बीच में वो वीआईपी बड़े शान से चलता है, लोग उसे नमस्कार करते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि कोई चोर या बदमाश पकड़ा जाता है तो वो भी बंदूक के बीच में ही चलता है। अब देखो, चल दोनों बंदूक के बीच में चल रहे हैं, लेकिन दोनों के चलने में कितना अंतर है। वीआईपी शान से चल रहा है, लोग नमस्कार कर रहे हैं, और जो चोर है वो सिर नीचे किए हुए चल रहा है। कितनी स्वयं की ग्लानी महसूस करता है, लोग कितना उसको गिरी हुई नजर से देखते हैं। तो चलेंगे तो मुक्ति धाम सब, लेकिन एक पास विद आनर बनकर जिनको धर्मराज भी सलाम करेगा, सब ब्राह्मण बच्चे महानता की नजर से देखेंगे। तो हमें मुक्ति धाम इस रीति से चलना है। तो अपनी मंजिल है मुक्ति धाम, फिर आना है जीवन मुक्ति में। जीवन मुक्ति में भी हमें रॉयल फैमिली में आना है। सिर्फ जीवन मुक्ति में आना बहादुरी नहीं है, क्योंकि जीवन मुक्ति में तो नौकर चाकर दास दासी चंडाल प्रजा सब होंगे। तो जीवन मुक्ति में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन मुक्ति में राज घराने में आना है। तो अपनी मंजिल है मुक्ति में पास विद आनर होकर चलना, और जीवन मुक्ति में राज घराने में आना। अब यह दो प्राप्ति के लिए हमें भगवान श्रीमत दे रहा है कि यह दोनों प्राप्ति कैसे हो सकती है। लेकिन बच्चे श्रीमत के अलावा कभी मन मत कभी पर मत में आ जाते, कभी मन मत और कभी पर मत। पर मत में गुरु मत भी है, व्यक्तियों की भी मत है, पर माना सभी पर। तो अगर हम इन दोनों प्रकार की मत में आए, चाहे मन मत चाहे पर मत, तो हम ऊंची मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रीमत ही हमें ऊंची मंजिल दे सकता है। किस आधार से? जो हमें श्रीमत दे रहा है उसकी तीन विशेषता है। वो किसी मनुष्य मत या मन मत में वो विशेषता नहीं है। वो तीन विशेषताएं हैं, भगवान नॉलेज फुल है, त्रिकालदर्शी है और सर्वसमर्थ है। नॉलेज फुल, त्रिकालदर्शी और सर्वसमर्थ। अब ये तीन विशेषताएं जिसके पास हों, उसकी मत आपको सहज ही श्रेष्ठ बना देगी। पहली बात नॉलेज फुल, सभी बातों की सभी प्रकार की नॉलेज भगवान के पास है। मनुष्य के पास या और किसी के पास सभी प्रकार की नॉलेज, और वो भी फुल नॉलेज, किसी के पास नहीं है सिवाय परमात्मा के। तो जब फुल नॉलेज ही नहीं है, तो आपको एक्यूरेट गाइडेंस दे नहीं सकता। जानता ही नहीं तो देगा क्या। लेकिन परमात्मा नॉलेज फुल है और सभी प्रकार की नॉलेज में फुल है, इसलिए एक्यूरेट गाइडेंस दे सकता है। दूसरी बात है, परमात्मा के श्रीमत में त्रिकालदर्शी है। कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की नॉलेज सिवाय परमात्मा के पास किसी के भी नहीं है। तो त्रिकालदर्शी होने के कारण हम बच्चों के लिए जो भगवान श्रीमत देता है, वो त्रिकालदर्शी समय कैसा है और हम आप आत्माओं के तीनों कालों को जानकर जिस बात में बच्चे का कल्याण है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ रूप में प्राप्त करे, वो भगवान श्रीमत देता है। आपके तीनों कालों को जानता है कि इस बच्चे का पास्ट हिसाब किताब कैसा है, इसके पास्ट के कर्म के खाते कैसे हैं, इसको किस तरह से खत्म कराएं और किस तरह से भविष्य श्रेष्ठ बने, यह बाबा हर एक आत्मा को देखकर उसको उस प्रकार से श्रीमत देता है। किसी के पास यह नॉलेज नहीं है कि आपके तीनों कालों को देख करके फिर आपको राय दे, वो तो सिर्फ आपके वर्तमान को देख रहा है। लेकिन परमात्मा तीनों को देख रहा है, तो त्रिकालदर्शी होने के कारण, सब कुछ जानने के कारण, जिसमें आपका कल्याण हो, जिसमें आपकी उन्नति हो, जिसमें आपको ज्यादा विघ्न ना मिले, वो रास्ता भगवान बताता है। और तीसरी बात है, भगवान सर्व समर्थ है। सर्व समर्थ, सिर्फ समर्थ नहीं लेकिन सर्व समर्थ है। तो सर्व समर्थ होने के कारण आपको सर्व प्रकार की मदद दे सकता है। सर्व समर्थ है, कोई भी आत्मा सर्व समर्थ नहीं हो सकती। थोड़ा समर्थ हो सकती है, अल्पकाल की हो सकती है, लेकिन सर्व समर्थ एक परमात्मा है। तो हमारे रास्ते में अगर कुछ विघ्न है, हम श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, तो भगवान सर्व समर्थ होने के कारण आपके विघ्नों को हटा सकता है। सिर्फ भगवान अपने को छुड़ाने के लिए कह देता है कि ड्रामा में जो नूंद होगा वो बाबा करेगा, ये इसलिए कहता है जिससे हर बात में बच्चे बाबा को एक कहने लगे, बाबा ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, अपना पुरुषार्थ ही छोड़ देंगे। अगर पुरुषार्थ छोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करो तो भगवान के शब्द ही हैं, हिम्मते बच्चे मत दे बाप, भगवान की मदद निश्चित है। तो तीन विशेषता भगवान के श्रीमत में है। वैसे भगवान तो सब में फुल है, लेकिन ये तीन विशेषता विशेष है। जैसे भगवान के साथ सर्व संबंध है, लेकिन तीन संबंध विशेष है सर्व संबंध, ऐसे भगवान सर्व विशेषताओं में सब में फुल है, लेकिन तीन विशेष हैं। तो जिसके अंदर इतनी विशेषता है, उसके श्रीमत पर अगर हम आत्माएं चलती हैं, तो मंजिल आसान भी है, सफल भी है, और मदद मिलने वाली भी है। तो श्री मत पर चलना अवश्य है। श्री मत हमारे जीवन का आधार है। अगर श्री मत में थोड़ी भी मन मत लाते हैं, तो ये भगवान की जो तीनों विशेषताएं हैं, तीनों से वंचित हो जाओ। नॉलेज फुल है, नॉलेज दे रहा है, लेकिन नॉलेज बुद्धि में बैठेगी ही नहीं। अगर मन मत या पर मत ले आए तो त्रिकालदर्शी है बाबा, लेकिन अगर मन मत पर मत लाए तो भगवान आपको टचिंग कराएगा ही नहीं, आपको टचिंग होगी ही नहीं, बुद्धि हलचल में है और मदद तो मिलेगी ही नहीं। इसलिए श्रीमत को जीवन में लाओ। अब प्रश्न है किस प्रकार की श्रीमत, क्योंकि श्रीमत भगवान कितने प्रकार से देता है, कितने प्रकार से भगवान श्रीमत देता है पांडव? अच्छा, शक्तियां बताएंगी। बाबा चार प्रकार से श्रीमत देता है, चार प्रकार से श्रीमत। पहली है मुरली, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। पहली श्रीमत है मुरली। दूसरा है दिव्य संदेश, जो संदेशियां ध्यान में जाती हैं और संदेश लेकर आती, जैसे गुरुवार को भोग लगाते हैं, बाबा संदेश देता है। और तीसरा है योग में जब बैठते हैं, हमारी लाइन एकदम क्लियर होती है तो बाबा टचिंग कराता है। कई प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं, बाबा से पूछते तो बताता है। तो तीसरी है दिव्य टचिंग, और चौथी है निमित्त आत्माओं के द्वारा डायरेक्शन। ये चार प्रकार की श्रीमत मिलती है। श्री मत पर हम सब बच्चे चलते हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन श्री मत पर चलने में अंतर क्या है? श्री मत पर हम आप भी चल रहे हैं और श्री मत पर दादियां भी चल रही है, श्री मत पर मम्मा बाबा भी चले, लेकिन हमारे श्री मत पर चलने में और महारथियों के बाबा मम्मा या दादियों के बड़े भाइयों के श्री मत पर चलने में मुख्य अंतर क्या है? सिर्फ छोटा सा अंतर है, वो अंतर अगर हम मिटा दें तो हम भी बाप समान जल्दी बन जाएं। वो अंतर है कि बाबा जो श्रीमत देता है, जिस प्रकार से देता है, वो श्रीमत उसी समय प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करना। जो श्रीमत जिस समय देता है, जिस प्रकार से देता है, वो श्रीमत उसी प्रकार से उसी समय लाने का पुरुषार्थ करना। इसमें हम सब नंबर वार हो जाते। सिर्फ मम्मा बाबा या दादियों में सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि जो श्रीमत बाबा ने जिस समय दी उसी समय प्रैक्टिकल किया। जैसे गुलजार दादी सुनाती है कि गुलजार दादी कहती, मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप क्या पुरुषार्थ करती हो? जिसने आपको कोर्स दिया उससे तो आप आगे हो गए, और जिसने आपको कोर्स दिया 7 दिन का कोर्स, वो पीछे रह गई, तो आपने क्या पुरुषार्थ किया मम्मा जो इतना आगे हो गई? तो मम्मा ने कहा कि क्या पुरुषार्थ किया ये तो मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूं कि बाबा के मुंह से निकलना और मेरे जीवन में लाने का पुरुषार्थ करना। तो जो बाबा के मुंह से निकला वो जीवन में लाना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
अगर बाबा की श्रीमत बाबा ने कहा और बच्चों ने किया तो उसी समय श्रीमत की पालना से तीन फायदा होता है। बाबा ने कहा और बच्चों ने किया तो तीन फायदा होता है। पहला फायदा कि आज्ञाकारी बनने से भगवान की दुआओं के पात्र बन जाते, तो भगवान की दुआएं श्रीमत को पालन करने में बहुत मदद देती, बहुत मदद देती। तो पहला फायदा भगवान की दुआएं। दूसरा फायदा है कि जो भगवान ने श्रीमत दिया अगर उसी समय करो तो भगवान उस श्रीमत को पालन करने की शक्ति भी दे रहा है, क्योंकि भगवान जानता है कि आत्माएं 63 जन्म से देह भान के कारण कमजोर हो चुकी हैं। भगवान जानता है, लेकिन भगवान को आत्माओं को संपन्न बनाना है। यह बाबा जानता है कि जो मैं अभी डायरेक्शन दे रहा हूं ये बच्चे प्रैक्टिकल कर नहीं पाएंगे, बाबा जानता है। तो अगर बाबा के डायरेक्शन को अमल में ना लाएं तो बोझा चढ़ जाएगा, लेकिन भगवान को बच्चों को संपन्न बनाना ही है, इसलिए संपन्न बनाने की श्रीमत देता है। लेकिन उस श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाने की भगवान शक्ति भी उसी समय देता है। आप अनुभव करके देखो कि जिस समय जो मुरली से सुना और उसी समय अंदर संकल्प लो कि आज मुझे यह करना ही है, तो भगवान की मदद तीन रूप से होती है। उसी समय अनुभव करेंगे आप तीन रूप से। कौन सी? एक तो अंदर से उमंग आएगा, हाँ करें करें करें, उमंग आता है। दूसरा भगवान का प्यार अनुभव होने लगता है कि बाबा मुझे प्यार कर रहा है, बाबा मुझे प्यार कर रहा है, भगवान के प्यार की फीलिंग आने लगती है। और तीसरी बात ये लगता है कि अभी मंजिल बहुत नजदीक है, पहुंच जाएंगे। ये भगवान की मदद शुरू में मिल जाती है। और जब करना शुरू करोगे फिर तो भगवान की शक्तियां भी मिलना शुरू हो जाती। शक्ति मिलेगी करने पर, बाकी उमंग, खुशी और बल ये मिलता है संकल्प दृढ़ करते ही। करके देखो कि कैसे बाबा की तुरंत मदद मिलती है। और तीसरा फायदा है, जैसे आप देखो कोई भी फल है, भोजन है, फ्रेश बना के खाओ उसका बल, और उसको थोड़े समय के बाद खाओ उसकी ताकत में अंतर हो जाएगा या नहीं, फर्क पड़ जाता है ना। तो जो भगवान की श्रीमत मिली तुरंत करने में और थोड़े समय के बाद करने में जो बीच में गैप पड़ता है, इसमें माया की डस्ट आ ही जाती, कुछ ना कुछ विघ्न, कुछ ना कुछ कारण आ ही जाएंगे। इसलिए श्रीमत की पालना जैसे मिली तुरंत करना ही है। अगर भगवान श्रीमत दे रहा है तो शक्ति भी दे रहा है, सिर्फ श्रीमत नहीं दे रहा है, शक्ति दे रहा है। इसलिए यह एक पाठ तो पक्का कर ही लो कि बाबा ने कहा तो मुझे करना ही है। बाबा जानता है, इस एक विशेषता से मम्मा सबसे आगे चली गई। बाबा ने कहा और करना, इससे बाबा की बहुत बड़ी दुआएं मिल जाती। आप जानते हैं पुराने जो भी हैं, जगदीश भाई को जिसने सारी किताबें लिखी है, जगदीश भाई इतनी किताबें कैसे लिख पाया, उसके अंदर विशेषताएं कहां से आ गई। उसका एक ही कारण था, भगवान का वरदान। और वरदान प्राप्ति का आधार था भगवान के श्रीमत की उसी समय पालना, उसी समय पालना। आप किसी को कुछ काम कहो उस समय वो न करे, बाद में बहुत करके दे, क्या फायदा। आप कहो अभी एक गिलास पानी ले आओ, प्यास लगी है, उस समय वो लेकर ना आए, बाद में मटका ही लेकर आ जाए तो क्या फायदा। ऐसे जो भगवान ने कहा उस समय ना किया, बाद में किया, तो उसका क्या फायदा मिलेगा। अगर उसी समय करो तो कितनी दिल की दुआएं मिलती है। जगदीश भाई का यही था। एक बार रात्रि क्लास में बाबा ने कुछ होमवर्क दिया और बोला सब इस पर लिख करके लाना, सुबह बाबा को दिखाना। कोई बात पर दिया तो जैसे क्लास पूरा हुआ सब कमरे में गए, लाइट चली गई, तो जब लाइट चली गई तो लिखेंगे कैसे? सब सो गए, बोला बता देंगे बाबा को लाइट नहीं थी, बाबा तो खुद ही जानता लाइट नहीं है। लेकिन जगदीश भाई नहीं सोया, वो कमरे से बाहर जाकर के जो रोड लाइट थी उसके नीचे बैठ करके उसने लिखा। और जब सुबह बाबा क्लास में आया तो बाबा ने पूछा कौन लिख करके लाया है, तो सबने एक ही जवाब दिया, बाबा लाइट नहीं थी। बाबा तो जानता था लाइट नहीं रहेगी, सब जानता था, फिर भी बोला है। तो जगदीश भाई ने हाथ उठाया, मैंने लिखा है। उसी समय बाबा ने जगदीश को संजय की टाइटल, विद्यापति की टाइटल, जो भी जितना था वरदान बाबा ने उसी समय दे दिया। अब किस आधार से मिला कि बाबा ने कहा और तुरंत किया? अब बाद में आप 10 पेज भी लिख करके लाओ तो क्या वो वैल्यू है जो तुरंत लिख करके दिया? नहीं ना। तो मुख्य बात है जो बाबा ने कहा तुरंत करना। तो बता रहे थे कि बाबा श्रीमत 5 प्रकार से देता है, 4 प्रकार से। तो उसमें पहली श्रीमत है मुरली। मुरली साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। कईयों का प्रश्न होगा कि साकार मुरली तो कब चली है, कितना समय हो गया, अव्यक्त को भी उस साकार को बीते हुए जो अव्यक्त पार चल रहा है लगभग 30-40 बरस तो हो गया, उस मुरली को कैसे समझें कि अभी अभी बाबा कह रहा है? क्योंकि बाबा के मुंह से निकलना और हमें करना, तो बाबा ने तो तब कहा था, अब कैसे समझें कि बाबा अभी कह रहा है? बात राइट है, लेकिन बाबा ने तब कहा था, लेकिन जो मुरली में कह रहा है वो बात तो मेरे जीवन में है ही नहीं ना। तो जो बात मेरे जीवन में है ही नहीं और बाबा कह रहा है वो मुझे अभी करना है, इसलिए वो श्रीमत अभी की है। कहा तब है लेकिन वो बात मेरे जीवन में तो नहीं है ना, इसलिए तुरंत समझो कि बाबा ने अभी कहा है, मुझे अभी करना है। और दूसरी है अव्यक्त मुरली। अव्यक्त मुरली ऐसी है जैसे लौकिक में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो जब पढ़ाई पूरी होने को आती है, पेपर का समय आता है, तो 1 महीना या कुछ दिन पहले बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, जाओ अपने घर में पूरी पढ़ाई रिवाइज करो, और जहां समझ में ना आए टीचर से आकर पूछ लेना। अव्यक्त मुरली भी सेम यही है, अपनी पढ़ाई का समय समीप आ गया, पेपर का समय बिल्कुल करीब है, उस लौकिक दुनिया में तो टीचर कहता आकर पूछ लेना, लेकिन अपना बाबा तो त्रिकालदर्शी है, जानता है बच्चे को किस चीज की जरूरत है, इसलिए उस प्रकार की मुरली चलाता है। तो अव्यक्त मुरली है उस समय बच्चों के आवश्यकता प्रमाण मुरली, इसलिए जो मुरली चली तुरंत धारण करना है, क्योंकि बच्चों के आवश्यकता प्रमाण मुरली चल रही है। दूसरा है दिव्य संदेश। दिव्य संदेश जो बाबा दे रहा है संदेशियों के द्वारा, वो वर्तमान माहौल को देख करके, वर्तमान वायुमंडल परिस्थिति को देखते हुए, उस समय बच्चे कैसे सेवा करें, कैसा अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं, कैसे स्वयं को सेफ रखें, यह बाबा संदेश में देता है वर्तमान माहौल को देखते हुए। इसलिए संदेश के द्वारा जो श्रीमत आपको मिलती है, जो संदेश मिलता है, तुरंत वो प्रैक्टिकल में लाना है उसी समय के लिए। अगर तुरंत लाओ तो जैसे पीछे बताया, उसका बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। और तीसरा है दिव्य टचिंग। आप योग में बैठते हैं, हर एक को टच होता है। जब योग अच्छा लग जाता है, चाहे अपने पुरुषार्थ के बारे में बाबा से पूछते हैं, या सेवा के बारे में पूछते हैं, या कोई परिस्थिति आई है उसके बारे में बाबा से पूछते हैं, तो हमें टचिंग हुई, हम कैसे माने कि बाबा की ही टचिंग है, कहीं हमारा अपने मन का संकल्प तो नहीं है। हम कैसे समझे कि यह टचिंग बाबा की ही टचिंग है। जो आपको योग में टचिंग हुई, ये हम कैसे समझें कि बाबा की ही टचिंग है, क्या निशानी है कि बाबा की ही टचिंग है, हमारे अपने मन मत की नहीं। बताएंगे? अच्छा, उसकी तीन निशानी। अगर बाबा की टचिंग होगी तो जो आपको टच हुआ, पहली निशानी है कि आपको अंदर से ये महसूस होगा कि यह मेरी शक्ति से बाहर की बात है। जो टचिंग हुई है यह मेरी शक्ति से बाहर की बात है, मतलब मेरे मन बुद्धि दिमाग किसी में भी बातें नहीं थी जो टचिंग हुई। तो पहली कि मेरी शक्ति से बाहर की बात। दूसरा, जो बाबा की टचिंग होगी वो अंदर महसूस होगा, 100% कॉन्फिडेंस होगा कि बाबा की ही टचिंग है। है या नहीं ये नहीं होगा, है ही है, ये अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि बाबा की ही टचिंग है। अगर है या नहीं ऐसा संकल्प आ रहा है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं जागृत हो रहा है, तो बाबा की टचिंग नहीं। बाबा की टचिंग माना अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा, हां बाबा की टचिंग है। और तीसरा है, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। इतनी निशानी है बाबा की टचिंग। तीसरी बात बताई, जो बाबा आपको श्रीमत देता है, श्रीमत में भी एक है पर्सनल श्रीमत, एक है जनरल श्रीमत। तो पर्सनल श्रीमत को जनरल श्रीमत में नहीं यूज करो। पर्सनल श्रीमत किसी को देख करके दी जाती है, उसके सरकमस्टेंसेस परिस्थिति को देखकर जज, वो सिर्फ उसी के लिए है, सबके लिए नहीं है। अगर वो श्रीमत आप है उसके लिए मान लिया अपने लिए, तो सफलता नहीं मिलेगी। उदाहरण के रूप से बृजमोहन भाई और रमेश भाई दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो जब दोनों साकार बाबा से मिले, दोनों का धंधा एक ही था, तो बाबा से मिले तो दोनों ने यही कहा कि बाबा मुझे बाजार की चाय पीनी पड़ती है, पीऊं या नहीं पीऊं। तो बृजमोहन भाई को बाबा ने कहा पियो और रमेश भाई को कहा नहीं पियो। दोनों एक ही हैं, लेकिन एक को बाबा बना कर रहा है, एक को छुट्टी दे रहा है, पर्सनल है। तो बृजमोहन भाई को पीने की छुट्टी इसलिए दिया, बाबा ने कहा कि अगर आप नहीं पियोगे तो आपके साथ वाले ऑफिसर नाराज हो जाएंगे, आपको जो इतनी सेवा में छुट्टी मिल जाती है वो आपको देंगे नहीं, इसलिए उनको नाराज नहीं करो, पी लो बाबा को याद करके। और रमेश भाई को कहा आपको नहीं पीना है, अगर आप नहीं पियोगे तो जो आपसे काम कराते सीए है ना, अकाउंटेंट का जो काम करते हैं, अगर उनके हाथ का आप चाय भी नहीं पियोगे तो कहेंगे देखो कैसे वकील साहब की आज मेरे हाथ से चाय भी नहीं पीते, ये तो बहुत ईमानदार हैं, ये तो एक पैसा भी नहीं लेते, अरे आपके पास लाइन लग जाएगी। अब देखो दोनों को पर्सनल पर है, लेकिन अंतर कितना है। इसलिए श्रीमत की पालना कुछ पर्सनल है कुछ जनरल है। आज हमने पर्सनल श्रीमत को जनरल में ले लिया है, जैसे बाबा मिलिट्री वालों को कहता है कि मजबूरी हालत में ब्रेड खा सकते हो, बिस्किट खा सकते हो या कुछ ले सकते हो। अब उसको दिया पर्सनल श्रीमत है, ले लिया है जनरल, क्या कि हैंड टच नहीं है। अब इस श्रीमत को जनरल लेने से जो ये क्या लिमका कोका कोला बिस्किट जो भी खाते पीते हैं, इससे अन्न का प्रभाव मन पर इतना पड़ रहा है कि योग लगना बड़ी दूर हो गया है, इसीलिए योग नहीं लग रहा है, मन भटक रहा है, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ रहा है, श्रीमत की अवज्ञा का दंड पड़ रहा है। और चौथी श्रीमत है निमित्त आत्माओं के द्वारा। निमित्त आत्माएं जो आपको डायरेक्शन दे रही हैं, वो भी बाबा के बताए हुए श्रीमत के आधार से ही दे रही है। उनके डायरेक्शन को मानना माना बाबा के डायरेक्शन को मानना। कई सेंटर पर क्या होता है, बहनें छोटी हैं और स्टूडेंट थोड़े पढ़े लिखे हैं, या धनवान है या उम्र के बड़े हैं, तो उनको लगता ये हमें क्या पढ़ाएंगी, इनसे ज्यादा समझदार तो हम हैं। वो बहनों को भी चलाने की कोशिश करते, लेकिन बाबा ने कहा कि उनको निमित्त किसने बनाया है। बाबा ने निमित्त दादियों के द्वारा उनको निमित्त बनाया है। हमसे ज्यादा विशेषता है तब भगवान ने उनको उस स्थान पर रखा है, गुरु भाई की गद्दी दिया है। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं और हम समझते हैं कि इनके अंदर कुछ विशेषता नहीं है या ये अवगुण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भगवान को कहते हैं आप समझदार नहीं हो जो इनको निमित्त बना दिया, आपसे ज्यादा तो मैं जानता हूं। नहीं, अगर भगवान ने उनको निमित्त बनाया है तो हमसे ज्यादा विशेषता है। इसलिए उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाओ। अगर चारों प्रकार की श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाते जाओ, आप प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन भगवान के दुआओं और वरदान से चल रहे। क्योंकि बाप का तीन रूप एक साथ है और तीनों रूप से श्रीमत देता है, बाप, टीचर, सतगुरु। अगर बाप की आज्ञा की पालना करो तो आशीर्वाद मिलेगा, टीचर की आज्ञा की पालना करो तो दुआ मिलेगी, सतगुरु की आज्ञा की पालना करो तो वरदान मिलेगा। आशीर्वाद, दुआ और वरदान, ये तीनों जिसको मिल जाए भगवान के द्वारा, आशीर्वाद, दुआ और वरदान, सोचो उसके लिए क्या काम मुश्किल है, कितना सहज हो जाएगा। भगवान की आशीर्वाद, भगवान का दुआओं का हाथ, भगवान का वरदान उड़ा देगा आत्मा को। लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी, जो श्रीमद्दी उसी समय उसी प्रकार फॉलो करना। टीचर से दुआ लेने की विधि, पढ़ाई रेगुलर, पंक्चुअल और होमवर्क करना, पढ़ाई रेगुलर, पंक्चुअल और होमवर्क करना, और सतगुरु से वरदान लेने की विधि, सतगुरु के समान अशरीरी होने का अभ्यास करते रहना, फरमान बरदार। सतगुरु का मुख्य फरमान है अशरीरी बनो, मेरे समान बनो, मेरे साथ साथ घर चलना है। सतगुरु वापस घर ले जाएगा। तो जितना अशरीरी होने का अभ्यास, सतगुरु का वरदान मिलता जाएगा। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से, तीनों के श्रीमत को जिस समय जैसे कहा उस समय उसी प्रकार से प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करो, तो आप आपके जीवन की जो मंजिल है मुक्ति में पास विद आनर होकर चलना और जीवन मुक्ति में राज घराने में आना उस सहज प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी को, आपने हम सभी को ज्ञान के खजानों से, अनुभवों के खजानों से भरपूर कर दिया। और किस प्रकार हम श्रीमत से अपने ब्राह्मण जीवन को सफल बनाएं, आपने हमें युक्तियां बताई, हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। सभी डायमंड हॉल के भाई बहन सेवाधारी यहीं पर रहेंगे, जाएंगे नहीं। ओम शांति।